रूपं तवैतात् पुरुषार्थमे वेद्यम् रूपं तवैतात् पुरुषार्थवेद्यम् श्रेयार्थितोऽभि वैदिकतान्त्रिकेण श्रेयार्थि वैदिकतान्त्रिकेण योगेन धाता सहना त्रिलोकान् योगेन धाता सहना त्रिलोकान् पश्याम् अमुस्मिन् नौह विश्वमूर्ते
ब्रह्मचारी नहीं पढ़ रहा, क्या हो गया? सब भूल गए क्या ब्रह्मचारी पढ़ना? माता जी लोग पढ़ रहा है ना? रूपम रूप तवा आपका एतद यह पुरुष ऋषभा हे पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हे पुरुषोत्तम इज्जम पूजनीय श्रेया चरम कल्याण अर्थ भी कामना करने वाले व्यक्तियों द्वारा
वैदिकम वैदिक आदेशों के अनुसार तंत्र केणा नारद पंचरात्र जैसे तंत्रों के अनुवायों द्वारा अनुभव किया गया योगेना योगाभ्यास द्वारा धातः हे परम नियंता हे सबके धारण करने वाले सह साथ नह हम देवताओं को त्रिलोकान तीनों लोकों को नियंत्रित करने वाले पश्यामि प्रत्यक्ष देखता है अमुष्मिन आप में उह हा पूर्णतया प्रकट विश्वमूर्ते विश्वरूप आप में अनुवाद और तात्पर्य भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की हे पुरुष श्रेष्ठ हे परम नियंता जो लोग सचमुच परम सौभाग्य की कामना करते हैं वे वैदिक तंत्रों के अनुसार आपके इसी रूप की पूजा करते हैं हे प्रभु हम आप में तीनों लोक को देख सकते हैं तात्पर्य वैदिक मंत्रों का कथन है यस्मिन् विज्ञाते सर्वम् एवं विज्ञातम् भवति जब भक्त अपने ध्यान में भगवान का दर्शन करता है या जब वह उनका साक्षात दर्शन करता है तब वह इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक वस्तु से अवगत हो जाता है निस्संदेह उसके लिए कुछ भी अज्ञात नहीं रहता इस भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु उस भक्त को पूरी तरह प्रकट हो जाती है जिसने भगवान के दर्शन कर लिए हैं अतएव भगवत गीता 4:34 में उपदेश है तदविद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनः तत्वदर्शिना गुरु के पास जाकर सत्य जानने का प्रयत्न करो जिनसे विनित होकर उनसे विनित होकर प्रश्न पूछो और उनकी सेवा करो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है क्योंकि उसने सत्य के दर्शन किए हैं ब्रह्मा जी ऐसे ही स्वरूप सिद्ध महाजन हैं स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु अतएव मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा से चली आने वाली शिष्य परंपरा को स्वीकार करे तभी वह भगवान को पूरी तरह समझ सकेगा यहां पर विश्वमूर्तौ शब्द संकेत करता है कि भगवान के स्वरूप में प्रत्येक वस्तु स्थित है जो उनकी पूजा करने में समर्थ है वह प्रत्येक वस्तु को उनमें और प्रत्येक वस्तु में उनको देख सकता है ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्निर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः भूतैर्महद्भिः ऐमा पुरो विभो निर्मायसे ते अदमोऽसुपुरुषम् भुक्ते गुणां षोडशषोडशात्मकम् सोलं कृषिष्ठं भगवन् वचांसि मे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणवामि हरि प्रिये भावराधिका माधुरी अस्वादे सुखकाज जयति कृष्ण चैतन्या कलि प्रकटे व्रजराज। जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
आप लोग थोड़ा आगे आ जाओ, बहुत लोग को जगह नहीं मिल रहा है पीछे, आगे आ जाओ थोड़ा और था बहुत जगह है, सब आगे जाओ ब्रह्मचारी लोग मुकुंद पद्म सब आ गया। तो इसके पूर्ववर्ती अध्याय में वर्णन किया गया है कि देवता लोग दुर्वासा मुनि के श्राप से सब कुछ से वंचित हो गए थे और बाद में ब्रह्मा शिवादि के साथ में जाकर के भगवान का आराधना किए, भगवान उनके प्रार्थनाओं से आराधना से प्रसन्न हुए और भगवान उनके समक्ष दर्शन दिए। श्लोक संख्या 7 तक बतलाया गया है भगवान के सौंदर्य का, भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि जब भगवान प्रकट हुए तो ऐसा चकाचौंध हुआ कि देवताओं का आंख बंद हो गया, कोई देख नहीं पाया भगवान को, केवल देख सके तो दो व्यक्ति वे थे, ब्रह्मा जी और भगवान शिव, ये दोनों महाजन हैं। तब तो ब्रह्मा जी उन भगवान के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं। जो पीछे का श्लोक था, कल श्लोक था, उस श्लोक में भगवान के 6 गुणों का वर्णन किया गया था। भगवान के अनेक नाम हैं और अनेक गुण हैं। ये जितने नाम हैं वो उनके गुण के आधार पर होते हैं। हम लोगों का यहां पर नाम कुछ रख दिया जाता है और गुण कुछ होता है। नाम रख दिया लक्ष्मीपति और भीख मांग रहा है, देखा आप लोगों ने सर, नाम रख दिया लक्ष्मीपति भीख मांग रहा है, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान का जो गुण है उसके अनुसार ही उनका नाम होता है। कोई भी भगवान काम करे, भगवान माखन चोरी किए तो माखन चोर नाम पड़ गया, रण छोड़कर भगवान भाग गए रण छोड़ जी नाम पड़ गया, रास रचाए रास बिहारी नाम पड़ गया। तो भगवान के अनंत गुण हैं और भगवान के अनंत नाम हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु शिष्यशास्त्र में इसका वर्णन करते हैं, नाम नाम अकार बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि। भगवान के एक नाम नहीं है, अनेक नाम नाम अकारी, और इस सब के सब नाम अकारी है, यानी दिव्य है, ट्रांसजेंडर है, क्योंकि भगवान दिव्य है, भगवान के कार्यकलाप दिव्य है, भगवान का सब कुछ दिव्य है। भगवान जो भी काम करते हैं उनका नाम दिया जा सकता है। मुझे एक कथानक याद आ रहा है, ये दामोदर लीला संबंधी है। भगवान का नाम दामोदर है। एक बार एक सेठ जी थे, बिजनेस व्यापार कर रहे थे, बड़ी परेशानी हो रही थी, तो एक महात्मा के पास पहुंचे। सब लोग जानते हैं, जब सब जगह से थक जाते हैं लोग साधु के पास आते हैं, मंदिर के पास आते हैं, मंदिर में आते हैं, तो महात्मा से अपना दुखड़ा बताए और कहे कुछ मंत्र दीजिए। सब लोग मंत्र से आते हैं, तो महात्मा ने उनको मंत्र दिया, सीताराम कहो, राम भक्त थे तो सीताराम 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 कह रहे थे, लेकिन वे थे बिजनेसमैन, घसीटने का उनको आदत था, दो का चार करने का। तो सीताराम करते 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 अब एक समय आया कहने लगे घसीटाराम घसीटाराम घसीटाराम, सीताराम भूल गए घसीटाराम कहने लगे। कुछ समय के बाद गुरु जी आए देखने के लिए कि भाई चेला क्या कर रहा है, भजन वजन कर रहा है कि नहीं। गुरु का काम है देखना कि भक्त भजन कर रहा है कि नहीं। भगवान चेतन महाप्रभु भी कहते, जो भी कोई वृंदावन से आता था तो पूछते थे कि रूप सनातन कैसे अपना भजन कर रहे हैं, किस प्रकार साधन हो रहा है, कैसे जी रहे हैं, कहां सो रहे हैं, सब कुछ। मृगारी कथा में हम सुने हैं कैसे नारद जी पर्वत जी के साथ में आए देखने के लिए मृगारी को कि भजन कर रहा है कि नहीं। तो ये महात्मा भी आए तो देखे ये तो घसीटाराम पढ़ रहा है, कुछ दूसरा नाम मंत्र कर रहा है। तो महात्मा सोचा कि शायद कोई दूसरा गुरु बना लिया होगा, वो मंत्र काम नहीं किया, दूसरा मंत्र ले लिया। तो महात्मा को जब देखा यह भक्त, तो तुरंत उठ करके जा करके अपने गुरु को शशांक धन्यवाद प्रणाम किया, कहा गुरुदेव धन्यवाद, आपने जो मंत्र दिया बड़ा चमत्कारी मंत्र है, उस मंत्र के द्वारा मेरा जीवन कल्याण हो गया। तो महात्मा सुनने के बाद कहे कि लेकिन भक्त, मैं तो तुमको मंत्र दिया था दूसरा, वो तो सीताराम मंत्र था, ये घसीराम तो कैसे करने लगा। तो कहा नहीं गुरुदेव, आपने तो ये मंत्र दिया था। कहा कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें सीताराम दिया था। तो बेचारा अब क्या करे, अब फिर सीताराम करने लगा, लेकिन उसका मन लगी नहीं रहता, कल घसीटाराम गुस्सा वही कह रहा था, बड़ा बड़ा दुखी था, बड़ा डिस्टर्ब था। तो रात को भगवान ने स्वप्न दिया गुरु को, कहा क्या तकलीफ है इसको, यदि वो घसीटाराम कह रहा है तो क्या तकलीफ है तुमको, तुम नहीं जानता है कि मेरा एक नाम घसीटाराम है। तो महात्मा सोचे कैसे ऐसे क्या बात कर रहे हैं, घसीटाराम कैसे है नाम। कहा तू नहीं जानता है, एक बार यशोदा मैया ने मुझको उखल में बांध दिया था और मैं उखल को घसीटते हुए लाया था, तब से मेरा नाम पड़ गया घसीटाराम। तो भगवान के जो भी लीला करते हैं उनके लीला के अनुसार उनका नाम हो जाता है। तो भगवान का एक नाम हो गया घसीटाराम, लेकिन आप लोग मत बना लेना नया नया नाम, आचार्यगण दिए हैं क्या क्या नाम, और ये नाम बड़े पावरफुल हैं। तो भगवान के यहां पर छह गुणों का वर्णन ब्रह्मा जी कहते हैं, अजात जन्म स्थित संयम आत्मा गुणाय निर्वाण सुखाय सुखाणवाय अरोणिम ने अपरिगणम धाम ने महानुभावाय नमो नमस्ते। ब्रह्मा जी ने कहा यद्यपि आप अजन्मा हैं किंतु अवतार के रूप में आपका प्रकट तथा अंतर्धान होना सदैव चलता रहता है। ये देखिए भगवान अजन्मा हैं फिर भी जन्म लेते हैं, अजन्मा जन्म ले, अजन्मा मतलब जन्म न हो और जन्मना मतलब जन्म ले। इसीलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा जन्म कर्म दिव्य है, तो उसमें ज्यादा माथा पेची मत करो। ये जो भौतिकवादी होते हैं और वो नहीं समझ पाते हैं, इसलिए वे कहते हैं अरे भगवान कहते कुछ है और करते कुछ है। इस श्लोक को साइंसिस्ट लोगों को दे दिया जाए वर्णन करने के लिए साइंस के अनुसार, कल का अनुसार, तो बोलेंगे तो हिपोक्रेसी है। एक जगह कहते हैं मैं अजन्मा हूं, तो कहते हैं जन्म लेता हूं, ये कैसे हो सकता है। तो इस दोनों के बीच में एक तारतम्य है, एक वस्तु है जो दोनों को जोड़ता है, और वह है दिव्यता। हम लोग सब कुछ को नापते हैं अपने इंद्रियों से, अपने अनुसार। अजन्मा मतलब जिसका जन्म हो, और जन्म जो जन्म लेता हो, तो हम अपने अनुसार नापते हैं कि अजन्मा का मतलब जिसका जन्म न होना चाहिए, और जन्म ले तो विपरीत हो गया। लेकिन ये भूल जाते हैं कि भगवान में दिव्यता है, भगवान दिव्य है। आप सदैव भौतिक गुणों से मुक्त रहते हैं, भगवान गुणातीत हैं, भगवान निर्गुण हैं। निर्गुण का मतलब है कि भगवान प्रकृति के तीन गुण, सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण से परे हैं। भक्तों को भी इन गुणों से परे होना चाहिए, यदि भगवान को जानना है तब। भगवान अर्जुन से कहते हैं त्रयगुण विषयान वेदा नैस्त्रय गुण भवार्जुना। हे कुंती नंदन, ये वेद का बात मत सुनो। ये वेद में बात जो कहा गया है प्रकृति के तीन गुण, सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण से संबंधित है। ये तुम मुझे जानना चाहते हो तो नैस्त्र गुण भवार्जुना। आग के जंतुओं को जानने के लिए हमें आग का शरीर धारण करना पड़ेगा, तो भगवान को जानने के लिए भगवतमयी स्वरूप धारण करना पड़ेगा। भगवान को जानने के लिए भगवान बनना पड़ेगा, भगवान का मतलब महान, महान बनना पड़ेगा। और महान कौन बन सकता है जो भगवान का भजन करता है। भगवान का भजन करके ही कोई महान बन सकता है। तो भगवान गुणातीत हैं, भगवान निर्गुण हैं, भगवान निराकार हैं। ब्रह्मा जी इन सब बातों का भली भांति ब्रह्म संहिता में वर्णन किए हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल रस विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, भगवान किसी अंग से कोई काम कर सकते हैं। हम लोगों को कोई चावल दाल ला करके आंख में डाल दे, आंख खा लेगा, मर जाएंगे, फूट जाएगा आंख। कान में डाल ले, मुंह में ही डालना पड़ेगा। लेकिन भगवान डेली 56 भोग खाते हैं। यहां पर भगवान को 7 बार भोग लाया जाता है। भगवान खाते हैं, कैसे खाते हैं? आंख से खाते हैं, दृष्टि से खाते हैं। एक बार किसी ने हमसे ऐसे ही प्रश्न किया कि आप कहते हो भगवान खाते हैं, ऐसा ही लास्ट टाइम बताया था, लेकिन वो थाली में ही सब कुछ पड़ा रहता है तो भगवान कैसे खा लेते हैं? वो थाली में सब कुछ पड़ा हुआ कैसे खा लेते हैं? तो इसका दो प्रकार से उत्तर दिया जा सकता है। एक तो प्रोपाय उत्तर दिए हैं, ये बिजली का लाइन है ना, एक गर्म लाइन एक ठंडा लाइन, देखा आप लोगों ने, दोनों तार देखने में एक समान लगता है, गर्म और ठंडा। लेकिन जिसके पास टेस्टर है वह जान सकता है कि कौन गर्म वाला है और कौन ठंडा वाला है, देखने में दोनों तार है। तो जिसके पास दिव्य दृष्टि है, जिसमें भक्ति है, वही समझ सकता है कि यह प्रसाद है और यह भोग है। ये तो आध्यात्मिक उत्तर हुआ। सामान्य उत्तर लॉजिक समझाना कैसे समझा सकते हैं, तो लॉजिकली यदि मान लो कोई व्यक्ति ये भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ रहा है, जैसे ये है 13वां अध्याय का, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्त हो देहे अस्मिन् पुरुष परम। अब इसको दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार पढ़ ले किताब से तो याद हो जाएगा, याद हो जाएगा ना। अब याद हो जाएगा तो यह श्लोक यहां भी चला गया, इसका मतलब क्या हुआ? ये किताब से उखड़ गया है, किताब में नहीं है, किताब में है ना, वो श्लोक किताब में भी है और यहां भी चला गया है। ठीक वैसे ही जय श्री गौरताय की जय, राष्ट्रीय हरिश्वरम से उनके जय, वैसे ही भगवान आंख से भोजन ग्रहण भी कर लेते हैं और साथ साथ भोजन वहां चल भी जाता है। ये हम भी कर सकते हैं तो क्या भगवान नहीं कर सकते हैं क्या? भगवान हमसे महान है, वो कर सकते हैं। तो इस बात को सामान्य लोग नहीं समझ पाते। अंगान यस्य सकलेन्द्र वृत्तमिन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति, कुछ भी कर सकते हैं। ये है भगवान के निराकार का एक्सप्लेनेशन ब्रह्मा जी के द्वारा। ये जो मायावादी लोग हैं बड़े एक्सपर्ट होते हैं लोगों को समझाने में, वो कहते हैं अरे भगवान का कोई आकार नहीं है, लेकिन हम लोग मूर्ख है ना, हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए भगवान हम पर कृपा करके एक आकार बना लेते हैं, लेकिन है वे निराकार। मायावादी लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन वैष्णवों को यह बात समझना चाहिए कि जो निराकार भाव है भगवान का, वह तो उनका ब्रह्म ज्योति है। निराकार का असली अर्थ होता है निसरती आकार इति निराकार, जिनसे सब आकार निकले हुए हैं, जो आकार के आगार हैं वे हैं निराकार। दूसरा अर्थ, जिनका आकार हम लोगों के आकार के समान नहीं है, हम लोगों का जो आकार है यानी ये देह जो है वो जन्म लेता है, कुछ दिन रहता है, बाई प्रोडक्ट उत्पन्न करता है, बुढ़ापा को प्राप्त करता है और खत्म हो जाता है, लेकिन भगवान का आकार ऐसा नहीं है। अदत्तम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। पुराण पुरुषम, भगवान पुराण पुरुष हैं, फिर भी नव यौवनम च, फिर भी जवान है। किसी ने भगवान का फोटो देखा है, चश्मा लगाए हुए भगवान, किसी ने देखा भगवान डंडा लेकर चल रहे हैं, घुटना में ऑपरेशन हुआ, देखा किसी ने? भगवान का बाल उजला हो गया है, दाढ़ी सफेद हो गया, देखा है क्या? उनका दाढ़ी मोच भी नहीं है। ये है भगवान नव यौवनम च। तो भगवान का जो आकार है सच्चिदानंद आकार है, हम लोगों का जो आकार है असत अचित और निरानंद, इस देह का आकार है। देह और देही में कोई भेद नहीं है, लेकिन हम में और हमारे देह में भेद है। देह परिवर्तनशील है, यहां की आत्मा हमेशा स्थिर रहने वाला है। तो इस बात को भक्तों को समझना चाहिए, निराकार का मतलब यह नहीं होता है कि कोई आकार नहीं है। और मायावादी लोग बतला देते हैं, प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा से झापड़ मारे हैं, प्रभुपाद उदाहरण दिए हैं वो पहाड़ का, जो पहाड़ है जो दूर से देखोगे तो दिखाई पड़ेगा कि धुंधला कुछ है, जो नजदीक जाएगा तो हरा भरा है, लेकिन जो पहाड़ के ऊपर जाएगा देखेगा पेड़ भी है, पत्थर भी है, रोड भी है, आजकल तो बंगलों बना देते हैं। अब बताओ पहाड़ के नजदीक कौन है? अरे हुंकारी तो भरो, पहाड़ के नजदीक कौन है? लो ये कहता वहां के रहने वाले। अरे मैं अभी तो बताया
कि एक आदमी है जो पहाड़ को, एक पहाड़ एक वस्तु है, तीन लोग देखते हैं, एक बहुत दूर है जो देखता है कि धुआं के समान पहाड़ है, एक थोड़ा नजदीक गया देखा हरा भरा है, और एक पहाड़ के ऊपर गया तो देखा कि रोड भी है, वहां पर पेड़ पौधे भी हैं, फल के ही पेड़ हैं, है? और घर द्वार भी आजकल तो बना लेते हैं। तो इन तीन लोगों को देखने वाले में कौन सबसे नजदीक है? थर्ड वाला ना, जो वहां पहाड़ पर गया था ना। तो जो भगवान के रूप को देखता है वो भगवान के नजदीक है, और जो भगवान कहता है कि भगवान कोई आकार नहीं हो, बहुत दूर है, प्रभुपाद झापड़ उन लोगों को मारे हैं, बोले बहुत दूर है, लेकिन कहते हैं भक्त तू तो नया लोग हो, तो नहीं जानता, इसलिए भगवान ने रूप बना दिया तुम लोगों पर कृपा करके। मूर्ख लोग जानते नहीं, ऐसे उल्टा सुल्टा कुछ बोलते रहते हैं। एनीवे, आप सदैव भौतिक गुणों से मुक्त रहते हैं और सागर के समान दिव्य आनंद के आश्रय हैं, भगवान रसराज हैं। अपने दिव्य स्वरूप में नित्य रहते हुए आप अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म हैं, अतः हम आपको जिनका अस्तित्व अचिंत है सादर नमस्कार करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के छह गुणों का वर्णन कर करके प्रणाम किए। अब ब्रह्मा जी आगे का आज का श्लोक कहते हैं, कहते हैं रूपम तव, तव मतलब वह रूप, वह रूप जिसका वर्णन पीछे किया गया है, जो अपरिमेय रूप है, अपरिगण या धामने, जो अपरिमेय है, जिनका आर पार नहीं है, उस रूप का जो अनंत है, वो कोई जान नहीं सकता है। रूपम तव, तो मतलब आपका, भगवान का जो स्वरूप है उसी का यहां पर वर्णन किया था। रूपम भगवान, पुनः यहां पर स्थल ज्ञान चाहिए, भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार है। तो इस श्लोक में मोटा मोटी यही बताया गया है कि जो व्यक्ति अपना अत्यंतिक कल्याण चाहता है, श्रेय, वो भगवान को, भगवान में सब कुछ, भगवान का भजन कर करके भगवान में सबका दर्शन करता है। देवता लोग कहते हैं कि हम लोग भी पश्यामी अमुष्णा नह उह विश्वमूर्ते, हे विश्वमूर्ते, आप में ही हम लोग अपने को भी देख रहे हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बात बतलाए हैं कि भगवान को जानने का तरीका, तीन बातें तात्पर्य में बतलाई गई है। एक, भगवान को जानने का रास्ता जो है वह क्या है, नहीं, भगवान को जानने से हम सब कुछ जान सकते हैं। यस्मिन विज्ञान यस्मिन विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञातम भवति, भगवान को जान लेंगे तो सब कुछ को यथावत जान लेंगे, एक बात। दूसरा, भगवान को जानने का तरीका क्या है, भक्ति जो इस सज्जुग का बात है तो उस समय बताया गया है, श्रेयो अर्थ भी वैदिक तांत्रिकेण जोगेना, तीन बात बताया गया है, वैदिक शास्त्र के अनुसार, वेद इत्यादि के अनुसार, नारद पंचरात्र जैसे तंत्रों के द्वारा और योग के द्वारा, योग मतलब भक्ति योग। अब इन सब को जानने के लिए क्या तरीका है, तो प्रभुपाद जी उदाहरण दिए हैं भगवद गीता से, तदविद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। नम्रता, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी और नम्रता ही एकमात्र वह गुण है जिससे हम भगवान को जान सकते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु यही बात कहे हैं, कि ये नाम जप करते हैं प्रत्येक दिन, ये नाम जप करने के लिए भी नम्रता बहुत जरूरी है। त्रिणादपि सुनिचेना तरो रवि सही सुना अमानिना मानदेना कीर्तनिया सुरा ही। नम्रता, नम्रता होना बहुत जरूरी है यदि कोई भक्ति करना चाहता है तब। और भक्ति कर भगवान को जानेंगे। नम्रता आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, नम्रता नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल नम्रता का अर्थ क्या होता है? एक बार एक भक्त हरिविलास प्रभु ने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद ये बतलाइए कि नम्र होने का मतलब क्या है, नम्रता किसे कहते हैं? देखिए प्रभुपाद जी ने क्या सुंदर उत्तर दिया, कहा कि नम्र होने का मतलब है कि तुम्हें सुदृढ़ विश्वास हो जाए, विदाउट एनी डाउट, कि संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, न तो तुम्हारा वो धन है, न तो तुम्हारा वो परिवार है, पत्नी पुत्र बाल बच्चे, न तुम्हारा ये सौंदर्य, न तो तुम्हारी सिक्योरिटी, न तो तुम्हारा विद्या, न तो तुम्हारा कठिन परिश्रम, न तो तुम्हारा नेम फेम एंड ग्लोरीज, कुछ भी नहीं है। यदि कोई है तो वह है भगवान का कृपा। यदि तुम इसके लिए कन्विंस हो जाओ कि भगवान के कृपा के अलावा और कुछ भी नहीं है संसार में, तब तुम नम्र हो, यानी अन्य किसी वस्तुओं पर सहारा न हो, केवल सहारा किस पर हो? कृष्ण पर। यदि ये बात समझ में आ जाए, विदाउट एनी डाउट, यदि हम कन्विंस हो जाएं कुछ भी हमें भगवान के कृपा के अलावा नहीं बचा सकता है, जब यह विश्वास हो जाए तब समझना चाहिए कि हम नम्र हैं। यही बात भक्ति अवश्य राखी बे कृष्ण विश्वास पालन। नम्रता का मतलब है कि इस पर विश्वास हो जाए कि कृष्ण अवश्य हमारा रक्षा करेंगे। हम लोग आज डिपेंडेंट हैं धन पर, पुत्र परिवार समाज पर, अपने शक्ति पर, अपने नेम फेम एंड ग्लोरीज पर। जब तक से ये चीज रहेगा तब तक से हम नम्र नहीं हो पाएंगे। तो हम लोगों को कल्टीवेट करना चाहिए, कृष्ण भावना संघ जो है इसके लिए स्थापित किया गया है। आप लोग देखे हैं नम्र बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे जो खिलौना बनाने वाला होता है, मूर्ति बनाने वाला, अभी गणेश जी का आएगा ना, गणेश पूजा भी आएगा, वो देखो जो खिलौना बनाने वाला होता है कैसे खिलौना बनाता है। पहले मिट्टी लाता है, मिट्टी को चलनी में चालता है ताकि उसमें कंकड़ न रह जाए, उसमें किसी प्रकार का तिनका घास इत्यादि न रह जाए, बिल्कुल मिट्टी शुद्ध छान करके अलग कर देता है। उसके बाद पानी डालता है, वो भी उतना ही पानी जितना से वो गोंद बन सके, मिट्टी बनाने का, खिलौना बनाने का। अब उसके बाद में वो मूर्ति बनाता है, मानो विष्णु का मूर्ति बनाया, गणेश जी का मूर्ति बनाया, कृष्ण का मूर्ति बना, कोई मूर्ति बनाया, वो रूप दे देता है, वो रूप विष्णु का मूर्ति बनाया, नारायण का चतुर्भुज चार भुजा वाला, अब वह रूप रह जाता है। उसके बाद उस खिलौने को सुखाता है, सुखाने के बाद उसको आग में पकाता है,
पकने के बाद भी वो ठोंकता है, चाहे घड़ा हो चाहे कुछ भी हो। जब सब प्रकार से ठीक हो गया तो समझा कि एक खिलौना सही है। हम लोग भी खिलौना है। यहां पर भक्त बनने का, जब भक्त बनने का प्रयास करेंगे तो हम लोगों को चाहिए अपने को चलनी में चालना, यानी साधु संघ प्रारंभ करें। और जो साधु लोग हैं वो कंकड़ पत्थर वो सब निकाल कर फेंक देंगे, निकाल पड़ते हैं, नहीं तो कंकड़ पत्थर रह जाता है तो खिलौना फट जाता है। पकने के बाद भी वो पत्थर निकल जाएगा, बम हो जाएगा उसमें। तो नाम लाभ पूजा प्रतिष्ठा इत्यादि जो है ये सब कंकड़ पत्थर है हमारे भक्ति में, इसको निकाल करके फेंक देना चाहिए। उसके बाद पानी डालने का मतलब होता है साधु संघ। और ये कंकड़ पत्थर और घास इत्यादि जो है ये सब समझ लो वैष्णव अपराध है, प्रजल्प है। वो सो रहा है उसको जगा दो भाई, अच्छा से कुर्सी पर बैठ गया, सो रहा है। हरदास आपका चेला, क्या नाम, उसको आगे रखो, उसको असर ही नहीं है। थक गया था, लेट नाइट आया क्या प्रोग्राम से, इधर आ जाए गुरु जी के पास। हरदास इधर है, तद विधि प्रणी पाते ना, उधर क्यों बैठा दिया उसको। तो वैष्णव अपराध, नामापराध, प्रजल्प, प्रजल्प को और वैष्णव अपराध को हाथी माता कहा गया है। प्रजल्प है क्या? प्रजल्प को कहा गया है वो भूसी कूटने के समान। भूसी जानते हो आप लोग, धान कूट दो तो चावल निकल जाएगा, अब क्या बचेगा उसमें, भूसी। अब तो कूटते रहो धान, उसमें चावल निकलेगा? तो प्रजल्प जो है वो भूसी कूटने के समान है। तो जो भक्त लोग प्रजल्प करते हैं समझ लो कि आप लोग श्रम एव ही केवलम, कुछ मिलने वाला नहीं है। वो भक्त कर रहा है, वो भक्त ऐसा कर रहा है, वो भक्त ऐसा कर रहा है। हम लोग ज्यादा एरिया ऑफ कंसर्न में रहते हैं, ना कि एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। हम लोग को रहना चाहिए एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में, कि हम कुछ करें कि लोग हमारा फॉलो करें। हम तो कुछ कर नहीं पाते हैं तो निंदा करना शुरू करते हैं, प्रजल्प करना शुरू करते हैं, और ये बन जाता है अपराध। और अपराध को कहा गया है, इसका तुलना चैतन्य महाप्रभु किए हैं हाथी माता, मैड एलिफेंट। हाथी तो ऐसे भी, हाथी माता, माता मतलब पागल, और हाथी मतलब हाथी, पागल हाथी के समान। हाथी तो ऐसे भी मस्त रहते हैं, कोई चलता है मस्ती के पे, हाथी के समान चल रहा है, गजगामनी है राधारानी कहा गया है हाथी के समान। और ऊपर शराब पिला दो हाथी को तो कहना ही क्या है। तो जो प्रजल्प करते हैं, जो वैष्णव अपराध करते हैं, वो हाथी माता को इन्वाइट कर रहे हैं। और हाथी माता के, हाथी माता और पागल हाथी क्या करता है, सबको जड़ से कबार करके फेंक देता है। तो वैसे ही भक्तिलता बीज जो है उसको, ये वैष्णव अपराध जो है, प्रजल्प जो है, वो उखाड़ करके फेंक देता है। तो हम लोगों को सावधान रहना चाहिए, एक कंकड़ पत्थर है इसको निकाल दो, और नहीं निकालोगे तो दीक्षा लेने के बाद भी, 10 साल के बाद भी असर उसका आएगा ना। वो बर्तन या मूर्ति पक जाता है तो भी वो पत्थर रह जाता है ना, फुम निकल जाता है, तो होल हो जाता है। तो शुरू में ही निकाल दो, पानी डालो, पानी डालो मतलब साधु संग करो, साधु संग करो, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, पानी प्रॉपर डालना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है साधु संघ के विषय में कि किस प्रकार से साधु संघ करनी चाहिए। जो हमसे वरिष्ठ भक्त लोग हैं, श्रेष्ठ भक्त लोग हैं, उनके चरणों में प्रणाम करके तदविधि प्रणिपाते ना जाकर के उनसे परिप्रश्न सेवया, उसके बाद सेकेंड जो हैं मित्रवत लोग हैं उनसे बैठ करके हरिचर्या करें, बड़े लोगों से पूछें, अपने जो सम्मान वाले हैं उनसे गोष्ठी करें और छोटे हैं उन पर कृपा करके उनको बतलाएं। लेकिन तीनों के लिए हाल संग है, ऐसा नहीं करो तो हमारा छोटा है मैं उससे नहीं, नहीं उसका भी संग करो। गुण कहीं से सीखा जा सकता है, किसी में गुण आ सकता है। तो साधु संग जो है वह बहुत नितांत आवश्यक है, वो पानी डालने के समान है। और इस प्रकार से जब साधु संग होगा तो भजन क्रिया द प्रॉपर साधु संग रहेगा तो सही ढंग का भक्ति प्रारंभ होगा, तब मूर्ति का शेप ठीक होगा। ठीक है ना, मूर्ति का शेप ठीक होने का मतलब यदि चार हाथ का नारायण बनाया तो छह हाथ नहीं हो जाएगा या दो हाथ नहीं हो जाएगा, वो चार ही हाथ रहेगा, ये मूर्ति का शेप है। तो जैसा संग करेंगे, यह करेगा संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन। तो इसलिए साधु संग जब करें, भजन क्रिया करें, जैसे आप लोग मंगल आरती आए थे, गुरु पूजा में आए थे, क्लास आए थे, जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम तो हम लोग अपने भक्ति का आकार दे रहे हैं, शेप दे रहे हैं। और इस प्रकार से करते रहें तो वही सूखने लगता है, जब पानी निकलने लगता है, जब सूखने लगता है मूर्ति का शेप ले लेता है, तो ऐसे हमारी भक्ति प्रौढ़ होने लगती है। जब भक्ति प्रौढ़ होने लगेगी तो फिर दीक्षा हो जाता है, और दीक्षा होना के बाद में सेवा बहुत जरूरी है। सेवा जो है वो अग्नि का काम करता है, सेवा करना बहुत जरूरी है। सेवन मुखे ही जिह्वा दौ स्वामी व अस्प्रत्यदा, भगवान ऋषिकेश हैं, भक्ति का परिभाषा रूप को स्वामी कहते हैं सर्व उपाधि विनिर्मुक्त तत्परेण निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। इंद्रियों के द्वारा इंद्रियाधिपति भगवान का सेवा करना, ऋषिकेश का सेवा करना भक्ति कहलाता है। कुछ लोग कहते हैं मैं तो कथा करता हूं, ये भी तो सेवा है ना। अरे भगवान तुमको 10 इंद्रियां दिए हैं तो एक इंद्रिया सेवा कर रहा है, और इंद्रिया से भी सेवा करो। हमको चाहिए 10 इंद्रियों से सेवा करना भगवान का, 10 इंद्रियां से सेवा करें, हाथ से भी सेवा करें। कुछ लोग हम नाम जप करते हैं, तो सेवा भगवान का सेवा, नाम सेवा है वो ठीक है, लेकिन और सब इंद्रियां, महाराज अम्बरीश इसके उदाहरण है। सवई मन कृष्ण पदारविंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णये करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु, करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु। हाथ से भगवान का मंदिर मार्जन करते थे, मन से भगवान का चिंतन करते थे, आंख से भगवान का दर्शन करते थे, जीवा से भगवान ब्राणुवाद करते थे। फिर रूप गोस्वामी इसलिए कहते हैं ऋषि केण ऋषिकेश, ऋषिकेण मतलब बहुवचन, ऋषिकेण समस्त इंद्रियों से सेवा करो, न केवल एक इंद्रिया से। अन्य जो है आप क्या देते हो भगवान वो नहीं देखते हैं, आप क्या अपने पास रखते हो ना भगवान वो देखते हैं। किसी के पास 100 रुपया है और 90 भगवान को दे दिया लेकिन 10 अपने पास रख लिया, और किसी के पास 1 रुपया है वो 1 का 1 पूरा दे दिया 100%, दोनों में बड़ा कौन है? अरे वो तो केलेगर पे दिया ना, दूसरा तो 90 दिया है। भगवान देखे कि 10 रुपया बचा कर रखा है ना। तो वैसे ही यदि हम लोग 10 इंद्रियों में से केवल 1 इंद्रिया लगाएंगे तो भगवान का बेईमान नंबर 1 है, 9 बचा करके रखा है अपने पास। भगवान देखते हैं, इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि आवर आश्रम इज नॉट मेंट फॉर लेजी एंड क्रेजी। लेजी और क्रेजी के लिए इस्कान नहीं बनाया गया है। जिसको लेजी और क्रेजी बनकर रहना, जाकर के अयोध्या में कहीं उधर कहीं जाकर के बबूत लगा करके सोए रहो, जाओ। इस्कान में रहना है तो नो लेजीनेस एंड नो क्रेजीनेस। डोंट बी लेजी, बी एक्टिव, सेवा करो। भगवान को देने की हमें प्रवृत्ति जागृत होनी चाहिए, देना चाहिए। भगवान से लेना कभी नहीं चाहिए। भगवान इतना हम लोगों को दे दिए हैं, सुंदर शरीर दिए हैं, मुफ्त में हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सब कुछ समय से मिल रहा है, और ये सब इतना ऋण है, चुकाए नहीं, और मांगे और मांगे और मांगे और तो हम में और बाहर के लोगों में अंतर क्या है? बस केवल तिलक कंठी कर लिए, दीक्षा लेते क्या हम शुद्ध हो गए क्या? स्पेशली जितने कांग्रेगेशन लोग हैं और फुल टाइम डे, सबके लिए हम लोगों को सीखना चाहिए देना। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ जो है वह देने की सोसाइटी है, लेने की सोसाइटी नहीं है। ये स्वयं सेवक संघ है, जैसे आरएसएस वाले हैं ना, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, स्वयं सेवक, वॉलेंटियर सर्विस। पुराने जमाने में जो भक्त लोग बने हैं, उन लोग अपना सब कुछ प्रभुपाद जी को दिए, घर बेच कर दे दिए, अपना कार बेच कर दे दिए, बैंक बैलेंस दे दिए, तब तो इतना बड़ा बड़ा सब बना हुआ है, ऐसे मुफ्त में थोड़े बना हुआ है। और भारत में ये तो हमारी सभ्यता थी, आज हम भूलते जा रहे हैं। कम से कम भगत लोग हम लोग तो ना भूलें। मुझे याद है हम लोग कम से कम 35-40 साल पहले तक ये सभ्यता थी। गिरा स्वामी का मैं असिस्टेंट था, उन दिनों ब्रह्मचारी थे, हम लोग जाते थे प्रचार करने के लिए, तो उनके पास स्टील का एक छोटा बक्स था, वो पानदानी होता है ना, पान रखते हैं बाहर वाले, तो पानदानी जैसा स्टील का बक्स था, उसमें दो पेड़ा रखते थे और एक छोटा चम्मच था, और उस पेड़ा से चम्मच से थोड़ा देकर लेकर के और ले देते थे। हम लोग 5-6 लोगों से मिलते थे, दो पेड़ा में 5-6 लोगों काम चला लेते थे, थोड़ा थोड़ा, मतलब प्रसाद मतलब थोड़ा। पहले ये लोगों का समझदारी था, प्रसाद मतलब थोड़ा, लेकिन अभी तो प्रसाद मतलब ठीक है, लेकिन प्रसाद मतलब थोड़ा। आज भी हरिद्वार तरफ जाओ तो लचीदाना देते हैं, दो लचीदाना देते हैं, वो प्रसाद कहलाता है। लोग ज्यादा नहीं लेते हैं, और मंदिर का तो खाते नहीं बिल्कुल। बाप रे बाप, मंदिर का हम नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। ये सभ्यता संस्कृति आज भी है, आज भी है। हमारे गुप्ते जी चेयरमैन साहब का देहांत हो गया, तो उनके कुछ गेस्ट लोग यहां पर ठहरे थे, वो 7 दिन तक 9-10 जो भी मेरी वाइफ ने प्रसाद व्यवस्था किया यहां से घर पर जाने के लिए सब कुछ। तो उनके ऑफिस से फोन आया कि प्रभु जी कितना देना है सब चीज का। मैं कहा देना है इसका मतलब क्या? गुप्ता जी भी तो मंदिर के हैं, है ना, क्यों देने का, मंदिर के ही है। लेकिन ये सभ्यता संस्कृति देखिए, मैंने बोल दिया कि नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन नीलेश उनका जो बेटा है गुप्ता जी का, ये सभ्यता संस्कृति देखिए, ब्रजहरी प्रभु को एक लेटर लिखे और बहुत अच्छा तरह से लिखे और कहे कि जो भी मंदिर का है मंदिर से हम लोग, हालांकि पिताजी मंदिर को अपना दूसरा घर मानते हैं, लेकिन फिर भी हम मंदिर का कुछ लेना नहीं चाहते हैं, हम देना चाहते हैं, और 11 लाख रुपए का चेक साथ में भेज दिए। यही किया ना, हार्डली कितने का खर्चा हुआ होगा? 1 लाख रुपए अभी नहीं हुआ होगा, 1 लाख रुपए नहीं हुआ होगा। मैं ये कह रहा हूं कि सभ्यता संस्कृति कितना इंटैक्ट है आज भी लोगों में, तो हम कांग्रीगेशन लोगों को ये कभी भूलना नहीं चाहिए। मंदिर में खाने के लिए मत आओ, प्रसाद तो मिलेगा ही, लेकिन ये धारणा मत कर के आओ, मंदिर में आओ देने के लिए, लेने के लिए मत आओ। जो ही लेने की भावना आएगी भगवान कहें बेईमान नंबर एक है, इतना दे दिया फिर भी उसको पेट नहीं भर रहा, और मांग रहा है, और मांग रहा है। लेने के लिए मत आओ, देने के लिए आओ। जब यह भावना रहेगी तब हमारा भक्ति जो है प्रौढ़ होगा, तब भक्ति प्रौढ़ होगा। तो इस प्रकार से जब दीक्षा ले लेते हैं तो सेवा जरूर करें, जो जिस रूप में है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ, सबको सेवा करना चाहिए। सेवा के अग्नि में जलाओगे तब वह मूर्ति पक्का मूर्ति बनेगा, नहीं तो सेवा का अग्नि में नहीं जलाओगे तो कच्चा मूर्ति रहेगा, जब वर्षा होगा तब पर भीग करके फिर कीचड़ बन करके रह जाएगा। और वही हो रहा है, हम लोग देखते हैं बहुत भक्तों को ऐसा हो रहा है। तो सावधानी से भक्ति में हमेशा इसका ध्यान रखना चाहिए। तो नम्रता बहुत जरूरी है, नम्रता बहुत जरूरी है। नम्रता से भक्ति होते, विद्या ददाति विनयम्। नम्रता से ज्ञान प्राप्त होता है, नम्रता से भक्ति प्राप्त होती है। और वही बात यहां का, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं, श्रेयो अर्थ भी, जो लोग अपना श्रेय चाहते हैं, दो चीज होता है, प्रेयस और श्रेयस। प्रेयस का मतलब होता है इमीडिएट हैप्पीनेस और इमीडिएट, और श्रेयस का मतलब होता है अल्टीमेट। जो अपना अत्यांतिक कल्याण चाहता है, श्रेयो अर्थ भी, यहां पर जनरल स्टेटमेंट है, टू हुम सो एवर मेट कंसर्न, सबके लिए। श्रेयो अर्थ भी, जो भी अपना कल्याण चाहता है उन लोगों को परम पुरुष भगवान का पुरुषर स्वभाव, पुरुष ऋषभाव, पुरुषों में जो श्रेष्ठ है, उन भगवान का पूजा करें। यहां पर तरीका बताया गया है करने का वैदिक शास्त्रों के द्वारा। वैदिक शास्त्रों में जो बताया गया है उस बात को अपने जीवन में उतार कर करके, तांत्रिकेण नारद पंचराता डीटी वर्षित इसके द्वारा, और जोगेन भक्ति योग के द्वारा, यानी जोगेन मतलब अष्टांग योग यहां पर है, लेकिन भक्ति योग भी हो सकता है। इस प्रकार से धातः, जो सबको धारण करने वाले हैं, उन परम पुरुष भगवान को, जो सबके नियंता हैं, सबको धारण करने वाले हैं, यहां देवता लोग कहते हैं कि हम लोग देख रहे हैं प्रभु, आप में सब कुछ देख रहे हैं। तो ये है दिव्य दृष्टि का गुण। जो भक्त होता है उस सब कुछ, अर्जुन भगवान का विश्व रूप सब कुछ को देखे, यशोदा मैया कृष्ण के मुंह में ही सब कुछ देख ली, ये भगवान का स्वर्गमय भक्ति है। तो पुरुषोत्तम को जानने पर सब कुछ हम जान सकते हैं। भगवद गीता के 15वें अध्याय जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग, उसमें भी भगवान यही बात कहते हैं, यो मामेव असम्मुद्धो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद्ध भयति माम् सर्वभावेन भारत। यो माम एवं असम्मुद्ध, जो असंशय होकर के, यानी संशय रहित होकर के, जानाति पुरुषोत्तम, भगवान जो मुझको जानता है कि मैं पुरुषोत्तम हूं। पुरुषोत्तम किसे कहते हैं? स्मृति शास्त्र में पुरुषोत्तम का अर्थ बताया गया है, हरि अथ एक पुरुषोत्तम स्मृते इति प्रसिद्धे इति अभिप्रेत्याह पुरुष ऋषभ इति। हरि ही एकमात्र इस संसार में परम पुरुष हैं, इसीलिए उनको पुरुष ऋषभ कहा गया है, जो यहां पर इस श्लोक में कहा गया पुरुष ऋषभ, पुरुष ऋषभ पुरुषों में जो श्रेष्ठ है। और वही बात पंद्रहवें दिन कहते हैं यो माम एव, मतलब निश्चय ही असमुद्धो निसंदेह रूप से जानाति पुरुषोत्तम, मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, स वह व्यक्ति वह भक्त सर्वविद भजति माम, सब प्रकार से मुझको जानता है, मेरा भजन करता है, और सर्वभावेन भारत, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है, सर्वविद भजति सब कुछ जानने वाला है, यानी सब कुछ देख रहा है। और वही बात आज के श्लोक में बताया गया है, तो जो भगवान को जान जाता है वो सब कुछ जान जाता है। तो यहां पर टू समराइज दिस वर्स, यहां पर ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं कि भगवान को जो अत्यंत कल्याण चाहता है, अत्यंतिक कल्याण जो अपना श्रेय चाहता है, उसे उन परम पुरुष का सर्वतो भावेन वैदिक शास्त्रों में बताए गए नियम कानून के अनुसार, तंत्र के अनुसार और योग शास्त्र के अनुसार जो भी साधन उपलब्ध हो, अभी साधन उपलब्ध है वह है भक्ति योग। कृते यध्यायतो विष्णु तेतायाम येतामख द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तदहरि कीर्तनम, सज्जुग में लोग तपस्या के द्वारा, त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में घर घर ठाकुर पूजा होती थी, कलयुग में हरिनाम कीर्तन के द्वारा। तो किसी प्रकार से भक्ति तीव्रेण भक्ति योगे न, तीव्र भक्ति योग के द्वारा येत पुरुष परम, परम पुरुष का हम आराधना करेंगे, जो भगवान इस प्रकार से हम भगवान को जानेंगे, और भगवान को जान लेंगे तो सब कुछ का उनमें दर्शन कर सकते हैं। भगवान का एक नाम है विश्वमूर्ति, वो दर्शन करते हैं। और परोपाइता पद में बताते हैं कि भक्ति करने के लिए सबसे जरूरी है नम्रता होना, ह्यूमिलिटी होना, तो ह्यूमिलिटी बहुत जरूरी है, और ह्यूमिलिटी आती है प्रचार से, प्रचार कीजिए, और प्रचार करेंगे तो अपने आप जो प्रभुपाद जी बतलाए कि भगवान में संपूर्णतया विश्वास हो जाना, यही नम्रता है, तो प्रचार करेंगे तो आएगा, और यदि प्रचार करेंगे तो प्रभुपाद जी बड़े खुश होंगे, प्रभुपाद जी बड़े खुश होंगे, और प्रभुपाद जी खुश हैं तो भगवान खुश हैं, यस्या प्रसादाद भगवत प्रसाद, प्रभुपाद जी खुश हैं। तो एक बार प्रभुपाद जी सिडनी में थे और वो सोच रहे थे इंडोनेशिया जाने के लिए, जकार्ता प्रचार करने के लिए। उसी समय एक भक्त थे अमोघ प्रभु और उनकी वाइफ थी रस रानी, वो आई थी सिडनी, उनका तबीयत ठीक नहीं था, विश्राम करने के लिए बेचारी आई थी। तो प्रभुपाद जी उसे पूछे, प्रभु से मिलने आई, और प्रभुपाद जी सोच ही रहे थे इंडोनेशिया जाने के लिए, और इंडोनेशिया में प्रचार करते थे उनके पति, तो प्रभुपाद जी से मिले और पूछे कि वहां प्रचार कार्य कैसे चल रहा है। तो जैसे हम लोगों से कोई पूछेगा कि प्रचार कार्य कैसे चल रहा है, मुकुंद पद्मा आपसे कोई पूछे प्रचार कैसे चल रहा है, क्या बोलोगे? अच्छा चल रहा है, सब यही बोलेंगे अच्छा चल रहा है। तो वो माता जी बोली कैसे चल रहा है, फिर देखा कि प्रभुपा जी खुश नहीं है, तो उसने कहा कि प्रभुपा जी अभी अभी हम लोग एक हाउस रेंट पर लिए। प्रभुपा जी बोले मैं पूछ रहा हूं प्रचार कैसे चल रहा है। तो वो बोले कि प्रभुपा जी अभी अभी हम लोग एक प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस खोले हैं आपके पुस्तकों को छापने के लिए। तो प्रभुपा जी थोड़ा खुश हुए, फिर कहे कि सोचे और यह बोले कि प्रभुपा जी आप इंडोनेशिया चल रहे हैं ना, तो भाई मैं सोच रहा था लेकिन वहां कोई प्रचार नहीं हो रहा है इसलिए मैं वहां नहीं चलूंगा। तो बेचारे एकदम
तो पसीना चुने लगा। कहा प्रभुपाद जी, आपके लिए हमने इतना व्यवस्था किया है, यू नो, इस यूनिवर्सिटी में व्यवस्था किया है, इस गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलने के लिए व्यवस्था किया है, हिंदू मंदिर में प्रोग्राम रखा है, यहां किया है, वहां किया, 10-15 प्रचार का जो एंगेजमेंट है वो किया, जब बताई तो प्रभुपाद जी मुस्कुराए और बोले मैं जरूर आऊंगा और वहां एक हफ्ता रहूंगा। तो प्रचार का मतलब होना चाहिए ठीक चल रहा है, नहीं, मेजरेबल होना चाहिए। प्रचार का मेजरेबल, कितना पुस्तक बांटा गया, कितना प्रोग्राम किए, कितना भक्त बनाए, कितना हरिनाम किए, प्रभुपाद चाहते हैं मेजरेबल, इसे नापा जा सके, ना कि अच्छा चल रहा है, ये तो ले मैन एक्सक्यूज है। प्रभुपाद इज नॉट हैप्पी। जब उसने कहा कि ए व्यवस्थाएं हैं, तब प्रभुपाद जी कहा हाँ मैं चलूंगा। तो मेजरेबल होना जरूरी है। तो प्रचार हम लोग सभी भक्तों को देखना चाहिए, सुबह से रात तक आज मैं क्या प्रचार किया, किस प्रकार से अपना जीवन बिताया, आज का दिन मैं कैसे निकाला, खा करके ब्रह्मचारी आश्रम में सो करके बिताया, 10 पुस्तक वितरण किया, क्या आज मैं किया। डेली सब लोगों को अपना हिसाब रखना चाहिए, दूसरा कोई क्या कर सकता है, कोई डंडा मारकर आप लोगों को भगत नहीं बनाया है, आप लोग स्वेच्छा से, हम सब लोग स्वेच्छा से आए हैं, वॉलंटियरली आए हैं, तो अपने को इंट्रोस्पेक्ट डेली करना चाहिए कि हम आज कितना प्रचार में लगे, और जितना मात्रा में प्रचार में लगे हैं उतना मात्रा में प्रभुपाद जी प्रसन्न है, और जितना मात्रा में प्रभुपाद प्रसन्न है उतना मात्रा में, कि कृष्ण तो बनिया नंबर एक है, वो कहते हैं ए अथा माम प्रपदंते तांत थे अभियान, जितना हमारे पास तो आएगा उतना ही मैं मिल जाऊंगा। तो नम्रता आज का श्लोक का यही बात था कि जो अपना कल्याण चाहता है, कल्याण के लिए उसे चाहिए भक्ति करना, परम पुरुष का आराधना करना, और आराधना कैसी होती है, नम्रता से। यदि भगवान को जान लेंगे तो सब कुछ को आसानी से जान सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? माइक माइक उधर दो।
हरे कृष्णा।
माइक ऑन करके दे दो ना, और माइक अपने से मत चलाओ, ऑन था ऑलरेडी, तुमने अपना बुद्धि लगाया, इंजीनियर गड़बड़ हो गया। बोलो। तू माइक भी ऑन नहीं करना जानता है, कैसे लाल कपड़ा पहन लिया? चलो जोर से बोलो। मैं कथा में बोला है बात। ओम तत् सत्। ओम का अर्थ है अ उ म, जो सृष्टि, स्थिति और प्रलय, जो तीनों जिनके अध्यक्षता में होती है, वे तत् सत्। वो कैसे हैं? सत्पुरुष हैं। सत्यम परम धीमहि श्रोतम, परम सत्य का ध्यान करता हूं, और परम सत्य कौन है? भगवान है। तो ओम तत्सत का मतलब सृष्टि, स्थिति और प्रलय सत्पुरुष के द्वारा होती है, परम पुरुष के द्वारा होती है, उनका मैं ध्यान करता हूं। सिंपल मतलब यह है। ओम जो है वो शाब्दिक अर्थ है, जैसे आदमी आप जा रहे हो, आपका कोई एक नाम भी होगा, कोई ब्रह्मचारी जी का, ब्रह्मचारी इधर आओ, आपका नाम ब्रह्मचारी जी नहीं है, लेकिन वो शाब्दिक अर्थ है। आदमी, स्त्री और आदमी, पहचान का अलग अलग अर्थ है। तो ओम जो है वो भगवान के पहचान का शाब्दिक अर्थ है। प्रणव ओम कारम रीक रीक साम जो रीम च, भगवान को इंडिकेट करने के लिए ये प्रणव ओमकार को बतलाया गया है। जैसे स्त्री और पुरुष में भेद करने के लिए किसी को आदमी शब्द जो है वो सबके लिए है, स्त्रियों को भी आदमी कहा जाता है, ऐसा नहीं कर पुरुषों के लिए, इसी हिसाब से पुंसा कहा गया, सबई पुंसा परो धर्मो, पुंसा मतलब स्त्री भी पुरुष भी, वैसे ही आदमी मतलब स्त्री भी पुरुष भी। तो ओम जो है वो भगवान का शाब्दिक अर्थ है बस, और कुछ नहीं। जैसे आपका ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी शाब्दिक अर्थ है आपके लिए, आपका नाम भी है कुछ है, लाल कपड़ा इसलिए ब्रह्मचारी कह दिया, ब्रह्मचारी जी थोड़ा इधर आ जाओ कहते हैं, बुलाते हैं ना, तो ऐसे ही ओम है। और कोई प्रश्न?
हरे कृष्ण।
अच्छा देखो ये माइक चल रहा है। हाँ,
अपराध भी छोटा बड़ा होता है ऐसा?
हीरा चोर या खीरा चोर दोनों चोर होते हैं, कोई हीरा चोरी करे या खीरा चोरी करे, समझता है ना? प्रभुपाद कहते हैं ड्राई स्टूल और वेट स्टूल, बोथ आर स्टूल। तो वैसे ही अपराध छोटा हो या बड़ा हो, अपराध अपराध है। अपराध का मतलब होता है अपराध, अप मतलब खत्म कर दे, राध मतलब अटैचमेंट, जो भगवान से अटैचमेंट है उसको खत्म कर दे, भगवान का जो प्रेम है उसे खत्म कर दे, वो कहलाता है अपराध। इसलिए हम लोगों को सब प्रकार के अपराधों से बचना चाहिए, नहीं कि मैं तो थोड़ा ही कहा हूं, थोड़ा कहा हो जरा कहा हो, अपराध किया अपराध किया है। इसलिए अच्छा है कि जिनके चरणों में अपराध किया जाकर क्षमा मांग लो तुरंत, जैसे दुर्वासा जी ने किया, अमरीश महाराज के खत्म हो जाएगा, वैष्णव दयालु होते हैं। अपराध अपराध है, छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं होता है, छोटा हो या बड़ा हो, बड़ा है छोटा हो छोटा है। अमरीश जी ने क्या अपराध किया? छोटा ही अपराध किया था ना, वो भी वो समझ गए थे कि अपराध हुआ है, अपराध नहीं किए थे। और कोई प्रश्न? एक बार एक ब्रज में एक भक्त थे अष्टवक्र, उनका अंग टेढ़ा मेढ़ा था। रूप गोस्वामी नित्य लीला प्रविष्ट थे, निकुंज जोनी ध्यान करते थे, और वो ध्यान में देख रहे थे कि राधा रानी कैसे कृष्ण से गुस्सा होकर के भाग करके जा रही है, और देख रहे थे कृष्ण और राधा रानी का जोकिंग चल रहा था। तो रूप गोस्वामी हंस दिए, और उसी समय वो अष्टवक्र वहां से जा रहे थे। तो इसने सोच लिया, अष्टवक्र ने सोच लिया कि देखो हमारा अंग ऐसा है ना, रूप गोस्वामी तो इतने महान है लेकिन हम थोड़ा टेढ़ा अंग लंगड़ा है, तो हमारे ऊपर हंस रहे हैं। रूप गोस्वामी उस पर नहीं हंसे, लेकिन वो सोच लिया, जब ही वो सोच लिया उसे दुख हुआ, और दुख के चलते रूप गोस्वामी के प्रति अपराध बन गया। अब दूसरे दिन क्या हुआ, जब रूप गोस्वामी ध्यान में बैठे भगवान की लीला का दर्शन करने के लिए, तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा है, काला सा दिखाई पड़ रहा है, बड़े व्यग्र हो गए। सनातन जी से पूछे, सनातन जी ने कहा कि आपने जरूर कोई अपराध किया होगा। उन्होंने कहा कि जान करके तो मैं कोई अपराध नहीं किया हूं, पता नहीं अनजान में कुछ हो गया हो। तो कैसे क्या पता लगाएंगे? तो कहा जितने ब्रज में वैष्णव लोग हैं सब लोगों को फिस्ट के लिए बुलाओ, और जो नहीं आएगा समझ लेना कि। तो उस समय गिने चुने वैष्णव लोग थे, तो रूप गोस्वामी सभी लोगों को बुलाए, सब लोग आए, लेकिन वो अष्टवक्र यानी लंगड़ा जो थे वो नहीं आए। तब पता चल गया कि उनके प्रति अपराध हुआ है, तो उनसे गए क्षमा मांगने के लिए, पूछे तो कहे देखो मैं जा रहा था और आप हमारे ऊपर हंसने लगे, आप इतने महान हैं कि मैं लंगड़ा हूं इसलिए ना। तब रूप गोस्वामी कहे, तो पूरा बात बताया गया। तो मैं कह रहा था कि रूप गोस्वामी अपराध कोई नहीं किया था, लेकिन रूप गोस्वामी के व्यवहार से उनके हंसने से वो समझ लिया। तो उसी प्रकार से हम लोगों को बड़ा सतर्क रहना चाहिए कि किसी प्रकार से, और यदि कोई भजन करता रहेगा तो अपराध होगा ही नहीं, अपराध वही करता है, प्रजल्प वही करता है जो भजन नहीं करता है, ये सत्य बात है। आप लोग 500 रुपीज स्टैंप पेपर पर लिख लो, जो प्रजल्प करता है इसका मतलब उसका माला जप नहीं हो रहा है, भजन नहीं कर रहा, चाहे मैं हूं चाहे आप हो कोई भी, जो भजन करेगा उसे प्रजल्प नहीं होगा, उसे अपराध नहीं होगा, उसको फुर्सत है नहीं अपराध करने का, नाम जप में लगा हुआ है, सेवा में लगा हुआ है, वो बड़ा ध्यान से एक एक चीज, मान उदाहरण के लिए कर्सन मेनू थोड़ा ध्यान से सुनो। मान लो भगवान का बर्तन सफाई करना है, जो कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति है बड़ा प्रेम से वो सफाई करेगा, देख देख करके कि एक भी काला वहां न रह जाए, एक भी काला न रह जाए। और ये उसका परिचय है जो भजन करता है, जो भगवान में लगा है। और जो भगवान में नहीं लगा, भजन में लगा, जल्दी जल्दी कदम को चौर प्रसाद लेने जाना है, छोड़ दो, आधा हो गया, कोई बात नहीं, बाद में आकर करेंगे। तो बड़ी सावधानी से भजन करना, भजन इतना आसान नहीं है, आसान भी है और कठिन भी है। एक बार किसी ने पूछा प्रभुपाद जी से कि भगवान का दर्शन, भगवान को कितने समय हम जान सकते हैं? प्रभुपाद वन मिनट, रिपीट, वन मिनट, एक मिनट भगवान को हम जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? अपराध शून्य हो जा करो ये भजन, दयालिता चैतन्य बले नाच रे अमर मन। जब नाम जप करते हैं रोमांच कंपा आना शुरू हो तब समझना। हम सब लोग, मैं भी उसमें हूं, मैं अलग नहीं हूं, हम सब बहुत अपराध करते हैं, इसलिए अभी तक लगे हुए हैं। नहीं तो एक मिनट भगवान सच्चाकार हो सकता है। जितना हो सके हम लोगों को बचना चाहिए वैष्णव अपराध से, प्रजल्प से, जितना हो सके। यस हनुमान जी।
प्रभु जी हरे कृष्ण। आप बताए कि गिरा स्वामी जब थे तब दो पेड़ा छह भक्तों को खिलाते थे और प्रसाद का मतलब थोड़ा सा, फिर मकर संक्रांति के अवसर पर तो फुरफोर लाइफ में तो लाखों लोगों के लिए प्रसाद जाता है और थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा मात्रा में बांटा जाता है। और आप बोले कि मंदिर का खाना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों में भाव, कुछ लोगों में भाव होता है। तो जो भक्त बने हैं प्रसाद खाकर बने हैं और जो भक्त है खाने से जीवित है।
इसका उत्तर मैं अकेला में दूंगा आपको।
अच्छा, हरे कृष्ण।
हाँ, प्रसाद देना चाहिए, ये उन लोगों के लिए जो भक्त नहीं बने हैं, भक्त बनाने के लिए जिनमें सभ्यता संस्कृति नहीं है, वो लोग भी बेचारे खाते हैं तो देते हैं, कुछ देते हैं, मंदिर का मुफ्त नहीं खाना चाहते हैं, अच्छे अच्छे लोग जितने होते हैं वो देते हैं, मुफ्त नहीं खाना, मेरा कहने का मतलब मंदिर का खाओ भर पेट लेकिन कुछ दो जरूर। शास्त्र कहता है गृहस्थों के लिए 50% दो मंदिर में, उतना नहीं तो 10% तो कम से कम दो, कि मुफ्त मत खाओ। मैं ये कहने का प्रयास ये है कि मुफ्त मत खाओ, भगवान को देना सीखो। और कोई प्रश्न? यस, माइक दे दीजिए, फेंक दीजिए, सर नहीं फेंक दीजिए। हाँ वही वही हुआ, फेंकने का मतलब गति होगा उसमें।
हरे कृष्ण प्रभु जी, किसी के प्रति द्वेष हो जाए वो भी अपराध हो जाता है,
वो तो और खतरनाक है। इसका मतलब आप काम से पूरित हो, काम ये स क्रोध है ये स रजोगुण समुद्भव, रजोगुण में आप हो, द्वेष होना तो इस संसारिक व्यक्ति का राग द्वेष अच्छा नहीं है, बहुत खराब है। उधर तो वो बेचारा कब से, उनके बाद में आप।
हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बताया कि परजल्पा से हमें बचना चाहिए, लेकिन कैसे पता करेंगे कि परजल्पा हो रहा है? कभी काल ऐसे होता है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी बातें होती रहती है, तो
कृष्ण से संबंधित बात हो तो सुन सकते हैं, लेकिन यदि किसी का निंदा हो रहा है कि अरे वो तो ऐसा है, वैसे करता है, ऐसे करता है, तो समझ जाता है कि परजल्पा है, वो ये परजल्पा है। कृष्ण संबंधित किसी वैष्णव का गुणगान हो रहा है तो सुन सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन निंदा हो रहा है तो वही परजल्पा है। या हम बहुत कुछ जानते नहीं है किसी में बात करते हैं, क्या बात करनी चाहिए, वही परजल्पा है, नहीं जानते हैं बात करते हैं। हाँ वैसा वो किया होगा इसलिए ऐसा हुआ होगा, अरे तू जानता नहीं तो क्यों ऐसा फेंक रहा है कि वैसा वो किया होगा, कहते ना हाँ वैसा किया उसे उसे धन मिला, वैसा वो किया वैसा हुआ, अरे नहीं जानते चुप रहो ना, भगवान नाम जप करो, कहने जरूरत क्या है। ठीक है,
प्रणाम महाराज। मैं दो तीन दिन पहले कथा
सुना, माइक में बोलो।
दो तीन दिन पहले कथा सुना और उसमें सवाल था कि गृहस्थ जीवन की परिपूर्णता किसमें है। गृहस्थ जीवन की परिपूर्णता किसमें है, तो वो जो कथा कर रहे तो मन संतुष्ट नहीं हुआ। 3 मिनट का वो वीडियो था मेरे पास, तो वो मैं जानना चाहता हूँ गृहस्थ जीवन की परिपूर्णता किसमें है।
कहाँ से सुना आपने?
वीडियो में सुना।
किसका कथा था?
कौन से था, नाम नहीं मालूम।
गृहस्थ जीवन की परिपूर्णता, चाहे गृहस्थ जीवन हो, चाहे ब्रह्मचारी जीवन हो, चाहे वानप्रस्थ जीवन हो, चाहे सन्यासी जीवन हो, सभी जीवन की परिपूर्णता इसी में है कि सर्वतो भावेन कृष्ण के शरण में जाएं, सब प्रकार से कृष्ण के शरण में जाएं। ग्रेसु अवस्थित राजन क्रिया कुरुन्नथोचित वासुदेव अर्पणा साक्षात उपासित महामुनि। ये गृहस्थों की धर्म नाराज बताते हैं, वासुदेव अर्पणा साक्षात, जो कुछ भी भगवान को अर्पण करो, बस सब कुछ भगवान को अर्पण करना, टोटल शरणागति, ये सबका लक्ष्य, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ, चाहे सन्यासी हो, कोई हो।
हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जो दो भक्त बात कर रहे हैं आपस में, अपराध कर रहे हैं, उसको वो बोल रहे, उसको वो बोल रहे, पर मैं यहां खड़ा हूं तो क्या मेरे को भी अपराध लगेगा इसका?
वैसे परिस्थिति में 3 काम, आप या तो उन लोगों को चुप करा दो, कहो प्रभु जी आप लोग अपराध कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। ये चुप नहीं करा सकते हो तो झापड़ मारो उन लोगों को, वो मत करना। वो भी नहीं कर सकते हो तो वहां से चले जाओ। और कोई प्रश्न? पीछे कोई?
हरे कृष्णा। कभी कभी भगवान को कहते हैं कि वो सगुण साकार है और निर्गुण निराकार है, तो इसका कुछ मतलब होता है? जैसे सगुण साकार है,
बिल्कुल मतलब होता है।
क्या मतलब होता है?
हाँ बताऊंगा, मैं कुछ पद पीछे। सगुण साकार, सगुण मतलब गुण के साथ, भगवान के अनंत गुण हैं। जैसे भगवान अनंत हैं, वैसे उनके गुण भी अनंत हैं, और साकार मतलब वो गुण स्वरूप हैं, उनमें और गुण में कोई अंतर नहीं है। हम गुण एक्वायर करते हैं कुछ, आप डिग्री प्राप्त किया, क्या एमटेक किया, बीटेक क्या किया, हैं बीकॉम किया, तो एक्वायर किया, पढ़ने गया था ना, पढ़ करके ज्ञान प्राप्त किया। भगवान बचपन से ही ज्ञान को प्राप्त है, वो बाहर से नहीं है, बस है। यह है सगुण साकार और निर्गुण निराकार। निर्गुण मतलब प्रकृति के 3 गुण से वे परे हैं, निर्गुण हैं, गुणों से वे परे हैं, और निराकार हैं मतलब उनका दिव्य आकार है। बताइए, मैं दिया था इस बात को।
हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसा बोले कि लीजिए एंड कलेजिए, प्रभुपाद बोले कि एक मेंटल और आलसी व्यक्ति को मंदिर में नहीं रहना चाहिए।
हाँ।
तो आश्रम मतलब कि अभी ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ, तो उसमें गृहस्थ का भी लागू होता है कि ब्रह्मचारी को ही लागू होते हैं?
प्रभुपाद जी कम से कम इस काम के लिए बात कहे थे, जो रहते हैं मंदिर में, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, जो मंदिर के द्वारा मेंटेन किए गए हैं, उनके लिए कहे थे। गृहस्थ भी यदि हैं, यदि पालन नहीं करते तो पैकअप, ब्रह्मचारी भी है ना, पैकअप गिराओ। पहले नियम बहुत कड़ा था, हम टेम्पल कमांड ब्रह्मचारी आश्रम फेंकते थे बर्तन, चलो जाओ सेवा करने तो निकलो, सोने का जगह नहीं है आश्रम। हाँ हरिदास, मैं सोचा कि हरिदास का प्रश्न क्यों नहीं कर रहा है।
जो बाद में बोले कि जो हुसी के सो हुसी किरण, इसका बारे में और बोले, मैं तुम्हारे नींद आएगी, मैं सो गया, मैं ठीक से
जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया। हरिदास, हृषि केण हृषि केश सेवनम भक्तिर उच्यते। भक्ति का परिभाषा रूप गोस्वामी बताए हैं कि भक्ति किसे कहते हैं,
सर्वो उपाधि विनिर्मुक्त, सब प्रकार के उपाधियों से निर्मुक्त हो जाओ कि मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, वानप्रस्थी हूं, सन्यासी हूं, मैं पीएचडी हूं, मैं ए हूं, मैं ओ हूं, मैं धनवान हूं, मैं गरीब हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, सब प्रकार के उपाधियों से विनिर्मुक्त, तत्परेण निर्मलम, तब निर्मल हो जाओगे। और ऋषिकेण ऋषिकेश, कैसे निर्मल होगे, उपाधियों से मुक्त कैसे होगे, ऋषिकेण ऋषिकेश, अपने इंद्रियों के द्वारा, भगवान का नाम है ऋषिक ईसा, ऋषिक मतलब इंद्रिया और ईस मतलब मालिक, जो इंद्रियों के मालिक हैं उन ऋषिकेश का सेवा करना, इंद्रियों के द्वारा इंद्रियपति इंद्रियाधिपति ऋषिकेश का सेवा करना भक्ति कहलाता है। आज हरिदास प्रश्न अच्छा किया, और कोई प्रश्न, हमें लेजी क्रेजी का बात कर रहा था, मैं सुना, सुनने में आया कि ब्रह्मचारी लोग कीर्तन में नाचते नहीं लेकिन स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने चल जाते हैं, ये लेजी क्रेजी का पहला पहचान है और मैनेजमेंट शुड लुक इन टू दिस, ये पहला पहचान है लेजी क्रेजी का कि मंदिर में कीर्तन में नहीं नाचेंगे, स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने जाएंगे, हम 60 साल के हो गया था स्विमिंग पूल में नहीं गए इसकान में नाता कीर्तन में, तो ब्रह्मचारी हो अभी नाचो आप लोग, मैं देखता हूं यहां पर 7:35 हुआ चल जाते हैं इधर से, कैसे भक्ति होगा, नाचो पसीना चुहाओ, पकाओ बर्तन अपना खिलौना को पकाओ कच्चा रह जाएगा, नाचो, नाचना ही एक मास्टर आ रहा है और कुछ नहीं, कीर्तन में नाचो, या तो माया के चंगुल में नाचो या कीर्तन में नाचो, डिसाइड हमें करना है कहां नाचेंगे हम। यस, माइक कहां, माइक कहां है,
हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू फॉर वंडरफुल क्लास। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि भाई हम्बलनेस इंटरनली होना चाहिए, आई नो दैट आई एम नॉट हम्बल, बट इफ आई एक्ट एज हम्बलनेस, इज इट राइट और रॉन्ग?
ज्यादा डेंजरस है, वो तो ज्यादा डेंजरस है। यदि हम अपने को माने कि मैं दास हूं तो कोई तकलीफ नहीं है, अपने को प्रभु मानेंगे तकलीफ हो जाएगा। यदि कोई पूछे आपका नाम क्या है तो को सच सच दास, सच सच प्रभु कहना मतलब गड़ हो जाएगा, दूसरे को प्रभु कहो अपने को दास, सेवा करने के लिए तैयार रहो। पहले था हमें 70-80 में हम लोग सेवा के लिए इतना, प्रभु जी ए हरि बोल क्या बात हो रहा है, हरि बोल ये क्या बात हो रहा है, अकाउंटिंग यहां पर हो रहा है क्या। पहले था कि हम लोग से पूछे प्रभु जी कैन आई डू सम सर्विस फॉर यू, कैन आई डू, अभी तो ढूंढते हैं कौन हमारा सेवा कर सकता है, हम जो सेवा करते हैं भूल गए हैं। तो अपने को अपने पोजीशन पर रखना, जीवरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको भूलना नहीं चाहिए, तब ठीक रहेगा।
मुझे हम्बलनेस आई नहीं अभी तक, बस स्टिल आई एम ट्राइंग, आई एम एक्टिंग,
करते रहो आ जाएगी, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुदान, करते रहो आदत बन जाएगी, आदत डालना है, अब तक से आदत पड़ गया है दूसरे को स्वीकार नहीं करने का, करते रहो, जबरदस्ती मन को मनाओ, ये मन ही है जो नहीं मानता है ना, तो मन को जबरदस्ती करो, दिल में ऐसा नहीं है, बुद्धि ऐसा नहीं है, बुद्धि तो सुनते हैं कि हमें सेवक बनना चाहिए, सेवा करना, ये बुद्धि है, लेकिन मन का था कैसे सेवा करूंगा, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं क्या बात मानूंगा, तो मन को पकड़ो। ऑल राइट,
हरे कृष्णा प्रभु, आपने बताया कि तीनों लोक जो होते हैं तो फिर 14 लोक और तीनों लोक में मतलब दोनों उसमें आ जाता है,
वो आजकल वो संक्षिप्त नाम है ना, जैसे एसी भक्ति विधान, अभय चरण भक्ति विधान, एसी कहते हैं ना आजकल, हमको कोई डीएनडी कहता है, है? मैं कह रहा हूं डीएनडी होता है डू नॉट डिस्टर्ब, तो वैसे सौट नाम है, तीन लोक, भूर भू स्व ये त्रिलोक कहा जाता है, ऊपर का, नीचे का और बीच का, और इसी में चौदह भुवन आ गया तीन लोक में। और कोई प्रश्न? हाँ माइक दे दो जल्दी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, से हमेशा आकार और निराकार के बारे में हमेशा डिस्कशन होता रहता है, तो निराकार मतलब है कुछ ऐसा वस्तु की जो निराकार है?
क्योंकि है ना, निराकार मतलब कि जिनका आकार हमारे समान नहीं हो निराकार कहलाता है, एक ये भी अर्थ होता है। जैसे हाथी है, हमारे लिए हाथी निराकार है, उसका आकार है लेकिन हमारे समान नहीं है, हमारे तारतम्य में वो निराकार है, हमारे समान नहीं है इसलिए निराकार है। और जो ये मायावादी लोग निराकार का बात कर रहे हैं, ये ब्रह्म ज्योति का बात करते हैं, भगवान के इफल्जंस का बात करते हैं। लेकिन इफल्जंस से परे भगवान का लोक है जहां भगवान निवास करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं ना, गोलोक धाम निर्धाम नितले तस्य देवी महेश हरिधाम सुते सुतेषु ते प्रभाव निचया विहितास्य जेन गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जो वैकुंठ धाम है, उसके वैकुंठ धाम का जो प्रभुदान दिया, तीसरा जैसे सूर्य, सूर्य नारायण है, सूर्य का अपना लोक है सूर्य लोक, और सूर्य का किरण, तो सूर्य का किरण का आकार क्या है? निराकार। तो उस तरह उस रूप में तो भगवान के ब्रह्म ज्योति को ये मायावादी लोग निराकार कहते हैं, उसको श्रेष्ठ मानते हैं। तो भगवान को भागवतम बताया गया, वदन्ति तत्तत् विदः तत्त्वम् जिज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। तत्व एक ही है, वदन्ति तत्तत् विदः तत्त्वम्, तत्त्वम् एक वचन, तत्व एक है, लेकिन वर्णन करते हैं विद्वान लोग तीन रूप में, ब्रह्मेति ब्रह्म के रूप में यानी किरण बाहर का, परमात्मेति लोकलाइज जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में, और भगवान जो पहाड़ सब जगह सब कुछ हुआ वहां पर भगवान के रूप। तो हम लोग भगवान को देते हैं, लोगों को डायरेक्ट देते हैं। ऑल राइट, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जाय, शील प्रभुपाद की जय।